मेरे युवा मित्रों नमस्कार। आज 25 जनवरी 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का अपने आत्मीय मित्रों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 11 से 25 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन 3 मित्रों के नाम हैं काजल सिंह चित्रकूट उत्तर प्रदेश से, अनुराधा सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से और सोमल दास निर्मलकर नागपुर महाराष्ट्र से। तो काजल, अनुराधा और सोमल, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, अब मेरे सामने 2 स्टूडेंट्स के नाम हैं और संयोग है कि ये दोनों हमारे 5th बैच के स्टूडेंट रहे हैं। अवसर है इन्हें बधाई देने का। इसमें एक स्टूडेंट है हमारे अच्छे लाल चौहान जो उत्तर प्रदेश से हैं और 5th बैच के स्टूडेंट रहे हैं। इनके मेल से मुझे पता लगा है कि आपने यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई कर लिया है। अभी कुछ दिनों पहले रिजल्ट आए थे। तो अच्छे लाल, आपको इस सफलता के लिए मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए, आपको बहुत अच्छे नंबर मिले और अंततः लिस्ट में बहुत ऊंचे जगह पर आपको अपना नाम देखने का सौभाग्य प्राप्त हो। और मित्रों, दूसरे स्टूडेंट हैं चंद्रभूषण यादव, आप जौनपुर उत्तर प्रदेश के हैं, हमारे 5th बैच के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने सूचित किया है कि अभी यूपीपीसीएस का जो प्री एग्जाम हुआ था और उसके रिजल्ट आए थे उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो चंद्रभूषण, आपको भी मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से और अपनी ओर से इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप मेंस और इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई करें इसके लिए शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। दोस्तों, बधाई के बाद अब मुझे कुछ सूचनाएं देनी हैं और सूचनाएं देने से पहले मैं आप सबको एक अलग से शुभकामनाएं दे दूं और आप समझ सकते हैं कि यह शुभकामना किस बात की है। आज 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी होना ही होना है। तो मित्रों, जो 26 जनवरी है, हम सबका गणतंत्र दिवस है और इस गणतंत्र दिवस के पूर्व दिवस पर मैं आप सभी को एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपको भी लग रहा होगा कि सर इतने लोगों के नाम क्यों लेते हैं, अपनी ओर से, फलानी ओर से, फलानी ओर से सीधे सीधे दे दिया करें। लेकिन मित्रों, अच्छा है जब किसी को भी शुभकामनाएं देते समय आप अपने एक बड़े समूह को लेकर के चलते हैं, खासकर ऐसे समूह को लेकर चलते हैं जिसके आप हिस्से हैं या जो समूह आपका अपना हिस्सा है, तो अच्छा लगता है। उसमें कोई ज्यादा वक्त खराब होता नहीं है। मुझे मालूम है कि जब मैं इस तरह की बातें करता हूं ना, तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है, वो थोड़ा सा इरिटेशन महसूस करते हैं। और उनके मेल को पढ़ने के बाद भी मेरी बात समझ में आ जाती है कि सर, आप जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप उनके नाम क्यों लेते हैं, जो मेल लिखते हैं उनके नाम क्यों लेते हैं, इस तरह की बातें वो कहते हैं। और मुझे मालूम है कि अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होता ना और अगर मैं उनका नाम ले रहा होता तो फिर उनको ये बात खराब नहीं लगती, लेकिन ऐसा होता है, ये मानवीय स्वभाव है। तो मित्रों, इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा कि मैं अपनी बात को आप लोगों के सामने इस अंदाज से रखता हूं। अब दोस्तों, कुछ सूचनाएं हैं और सूचनाएं ये है, चूंकि कल 26 जनवरी है तो बट नेचुरल है कि कल डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। नेक्स्ट डे फिर आप देखते हैं कि शनिवार है, शनिवार को और रविवार को आता ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको इस क्रम में दी हैं। और अब सूचना यह है मित्रों कि इस बीच में डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा। प्रेस क्लिपिंग्स आपको पहले के पैटर्न पर मिलती रहेंगी। योजना और कुरुक्षेत्र के आपको हिंदी इंग्लिश के 2-2 यानी कि टोटल 4 आर्टिकल्स मिलेंगे। वीकली क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए प्राप्त होगा और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उन्हें स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ये कुछ रूटीन की सूचनाएं हैं। दोस्तों, आइए अब हम न्यूज एनालिसिस पर कुछ बातें करते हैं। कल की न्यूज आपने सुनी और दूरदर्शन की न्यूज भी आपने देखी होगी। आप देखिए कि कल अगर आपने दूरदर्शन की न्यूज का जरा सा भी विश्लेषण किया हो तो उन्होंने कितना समय एशियन पर दिया है, आप ये जो आशियान जो संगठन है उस पर कितना सारा समय दिया है, और उसमें डिस्कशन के लिए जो उन्होंने लोग बुलाए थे, आप उनकी विशेषज्ञता देखिए। एक तो मैडम सीकरी ही थी जो इंडियन फॉरेन सर्विस की रही है और बड़ी बड़ी सम्मानित भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रही हैं, और दूसरे जो थे वो उसके विशेषज्ञ थे। तो मित्रों, मैं जरूर ये बात कहता हूं आप लोगों से कि आप डीडी न्यूज देखिए, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बहुत लोगों के मेल से भी मुझे पता लग जाता है, उनको पता नहीं क्या परेशानी है, हम देख नहीं पाते हैं, हमारे में आता नहीं, पता नहीं क्या क्या तो बातें लिखते हैं मित्रों, मेरी समझ में नहीं आता, फिर मैं क्या उपाय बताऊं, फिर मुझसे उपाय भी पूछते हैं। आप ये बताइए कि इतने न्यूज चैनल्स आते हैं, आप किसी भी न्यूज चैनल्स को देखिए, क्या सच में ऐसे टॉपिक पर वो इतना समय देते हैं? नहीं देते हैं, और नहीं देते हैं इसका अपना रीजन है, उनका अपना रीजन है, वो अपने जगह पर सही है, दूरदर्शन का अपना रीजन है, वो अपनी जगह पर सही है, और आपके पास देखने का अपना रीजन होना चाहिए ताकि आप सही हो सके। तो अगर आपने कल दूरदर्शन पर वो प्रोग्राम देखा हो तो आपको जो एशियन कंट्रीज हैं इस टॉपिक पर आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आपको ज्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप जब अखबारों में उससे संबंधित आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, तो बड़े आराम से वो चीजें समझ में आ जाएंगी। मित्रों प्लीज इस काम को कीजिए, अगर सच में आप गंभीरता और ईमानदारी के साथ सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो। और मैं यहां आपको एक सूचना दे दूं कि जो आकाशवाणी पर भी पब्लिक चर्चा का विषय के अंतर्गत ये विषय लिया गया था, भारत आसियान संबंधों का नया दौर, हो सकता है कि आपने ये सुना हो, ये भी सुनने की कोशिश कीजिए, ये भी आप सबके लिए बहुत उपयोगी टॉपिक है। खबर में जो दूसरी खबर थी मित्रों वो पद्मावत को लेकर के थी। पद्मावत फिल्म आज रिलीज होनी है, लेकिन रिलीज होने से पहले पूरे देश के कुछ राज्यों में, कहना चाहिए पूरे देश में तो नहीं, देश के कुछ राज्यों में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है, इसको लेकर के अराजकता पर जो हम लोगों ने कुछ समय पहले बातें की थी, कुछ दिन पहले ही, उसके तहत मैं कर चुका हूं। लेकिन ये मामला सच पूछिए तो इतने सारे हमारे सामने एंगल क्रिएट कर रहा है, कोण इसने हमें दे दी है सोचने के लिए, तो मुझे लगता है कि यह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें न्यायपालिका भी शामिल है, इसमें राज्य भी शामिल है, इसमें प्रशासन भी शामिल है, इसमें अनौपचारिक दबाव समूह भी शामिल है, इसमें राजनीति भी शामिल है, इसमें परंपराएं और आस्था भी शामिल है, ढेर सारे तत्व इसमें शामिल है। तो इस घटना को आपको इसी व्यापक रूप में, इन्हीं व्यापक रूपों में देखना चाहिए, तभी आप इस विषय के साथ न्याय कर सकेंगे। दोस्तों मैं आपको एक शब्द के बारे में बताता हूं, जानकारी देना चाहूंगा, ये मैं जब अखबार पढ़ रहा था तो उसमें मुझे ये शब्द मिला है, वो शब्द है इंट्रोपोर्टेबिलिटी। ये इंग्लिश का शब्द है तो मैं नहीं जानता कि हिंदी का इसका क्या अनुवाद होगा, लेकिन मैं आपको बता, इंग्लिश को ही आप समझ लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए, ध्यान दे दीजिए। देखिए इसमें दिया इंटरोपोर्टेबिलिटी, इंटर का मतलब होता है अंदर, पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है जो रखने योग्य हो, संभालने योग्य हो, जिसे आप बहुत अच्छे से रख सके, छोटा, सुविधाजनक, जो भी है, इस तरह का कोई भी शब्द आप लगा सकते हैं। तो इंटरपोर्टेबिलिटी क्या है, ये शब्द आपको कभी पढ़ने को मिलेगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहने का अर्थ क्या है। ये बेसिकली दोस्तों एक कंप्यूटर का एक सिस्टम है, कंप्यूटर का एक सिस्टम है, और कंप्यूटर के सिस्टम में होता यह है कि कंप्यूटर को जितनी भी आप इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं, देखिए कंप्यूटर में तो हम इंफॉर्मेशन ही डालते हैं, तो जितनी भी हम उसे इंफॉर्मेशन देते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को आपस में ही एक्सचेंज करके उसका यूज कर लेता है, मतलब उसके जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उन सॉफ्टवेयर में वो इंफॉर्मेशन जा करके और उनका उपयोग वह खुद ही करने लगता है, यानी कि अंदर ही अंदर उनमें इंफॉर्मेशन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और फिर वो नतीजे हमारे सामने रख देता है, इसे कहा जाता है इंटरोपोर्टेबिलिटी। तो इतना बस आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने शुरू में जो मुख्य विषय की बात मैं करता हूं वो आज मैंने नहीं की, मैंने जानबूझ करके नहीं की। थोड़ी सी चीजों को तोड़ना भी चाहिए, नहीं तो दिमाग को फिर वही आदत पड़ जाती है ना, तो मैंने जानबूझ करके वो बात नहीं की है। मित्रों, आज मैं अपने उस वायदे को पूरा करने जा रहा हूं जो इसी सप्ताह कुछ दिनों पहले मैंने आपसे किया था। आज मैं आपसे संरक्षणवाद पर कुछ चर्चा करूंगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्ट करना। जब हम संरक्षण की बात करते हैं, देखिए तो इसका सीधा संबंध इकोनॉमिक्स से है ना, अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करना। और सच पूछे तो जब हम अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं तो इसका मूल संबंध हो जाता है एक प्रकार से जो उद्योग है हमारे, उत्पादन के जो तरीके हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उत्पादन को प्रोटेक्ट करना, राइट। उत्पादन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, उत्पादन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो दूसरे देश उत्पादन कर रहे हैं उसी चीज का, कि हमारा अपना उत्पादन किसी मायने में, किसी रूप में, ये कह लीजिए कि उनसे प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं कर रहा है, कर सकेगा वो, उसका चाहे कोई भी कारण हो कि हमारे पास कच्चा माल नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम उतना ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, बहुत से कारण होते हैं कि हम कंपटीशन में खड़े होने जैसी स्थिति नहीं अपने को समझ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करें, यानी कि उन्हें इस प्रतियोगिता से बचाएं। इसे आप अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से रिजर्वेशन जैसी स्थिति है। अब आप देखिए कि हमारे ही समाज में एक ऐसा वर्ग है जो मुख्य धारा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप में मुख्य धारा की स्थिति में नहीं है, तो अगर हम इन्हें रिजर्वेशन नहीं देंगे, यानी कि प्रोटेक्शन अलग से नहीं देंगे, तो फिर ये कभी मुख्य धारा में आ ही नहीं पाएंगे। तो कुछ उसी तरह की बात यह संरक्षणवाद में भी है। दोस्तों, में जो संरक्षणवाद की जो थ्योरी है, ये बेसिकली वाणिज्यवाद के समय आया, यानी कि एक ऐसे समय में आया जबकि वस्तुओं का खूब व्यापार होने लगा। वाणिज्यवाद का मतलब वही है कि वस्तुओं का व्यापार, व्यापार मतलब विद इन द कंट्री नहीं, एक ही देश में नहीं, बल्कि एक देश का दूसरे देशों से जब व्यापार होने लगा, फिर एक थ्योरी आई और वो आई ट्रेड बैलेंस की। ट्रेड बैलेंस का मतलब है कि भारत अपना माल विदेशों को भेज रहा है और विदेशों से कुछ माल मंगा रहा है, तो अब उसके खाते में ट्रेड बैलेंस क्या है? ट्रेड बैलेंस का मतलब है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 100 रुपए का तो माल भेज रहे हैं और 200 रुपए का माल मंगा रहे हैं, तो 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, तो फिर इस नुकसान की हम भरपाई कैसे करेंगे? तो ट्रेड बैलेंस को आप कैसे बना के रखेंगे कि भैया 100 रुपए का हम माल भेज रहे हैं ना, तो वहां से हमारे यहां 100 रुपए से ज्यादा का माल ना आए, तभी तो हमारा बैलेंस बना रहेगा। कोशिश करेंगे कि हम 90 का आए, 80 का आए, कम से कम आए, ताकि हम फायदे में रहे। तो वहां से ये संरक्षणवाद की नीति की शुरुआत हुई। और मित्रों, अगर आपने इससे पहले हिस्ट्री पढ़ रखी हो तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको मिलेगा, और वो यह है कि जब ब्रिटिश सरकार का शासन भारत में हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, उसकी आर्थिक नीतियों का। और उन आर्थिक नीतियों में आप पाएंगे कि इंग्लैंड ने संरक्षणवाद की जो नीति अपनाई थी वो ब्रिटेन के उद्योगों के लिए अपनाई थी। मतलब 17वीं 18वीं शताब्दी तक अगर आप बहुत से अंग्रेजों के मेमोयर्स पढ़ेंगे, संस्मरण पढ़ेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि इंग्लैंड के लोग इस बात के प्रति बड़ी गहरी चिंता व्यक्त करने लगे थे कि भैया ये जो भारत से जो कपड़ा आ रहा है ना, सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, इनके आने को रोको, क्योंकि इन कपड़ों ने अब तो हमारे ड्राइंग रूम तक पर कब्जा कर लिया है। ये मतलब उनके शब्द हैं। ड्राइंग रूम पर क्यों कब्जा कर लिया है? उनके घर के पर्दे भारत से आए हुए कपड़े से बने हुए हैं, सोफा के कवर भारत से आए हुए कपड़े से बने हुए हैं, वो जो खुद पहन रहे हैं भारत से आए हुए कपड़े से बने हुए हैं। तो सरकार ने क्या किया, इंग्लैंड की सरकार ने, चूंकि भारत प्रशासन था, तो उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वह यह कि शुल्क लगा दिया, इम्पोर्ट ड्यूटी। ये संरक्षण देने का सबसे बड़ा हथियार होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी। जैसे मान लीजिए कि भारत से एक कपड़ा वहां जाकर के 100 रुपए में पड़ता, तो उस पर 300% आप ड्यूटी लगा दीजिए। कुछ सामान ऐसे रहे हैं इंग्लैंड ने 400-400% ड्यूटी लगा दी है, 400%। हमारे यहां से जो चीनी जाता था ना इंग्लैंड, उसको 3 गुना ज्यादा टैक्स उस पर लगा दिया। तो अब बट नेचुरली कि भारत का चीनी उद्योग पनप नहीं पाएगा, और ब्रिटेन में जो चीनी उद्योग है उनको मौका मिल गया, क्योंकि भारत की गई हुई चीज अब वहां महंगी हो जाएगी। तो मित्रों, कुल मिलाकर के यही संरक्षणवाद है, और इसके केवल यही तरीके नहीं है कि आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा दीजिए, यानी कि उस पर बहुत ज्यादा आप आयात शुल्क लगा दीजिए, और भी बहुत से तरीके हैं संरक्षण देने के। जैसे आप एंटी डंपिंग ला कर देते हैं कि आप चीज बाहर से आई हुई चीजों का ज्यादा संग्रहण नहीं होगा, आप अपने यहां के उद्योगों को डायरेक्ट सब्सिडी देना शुरू कर देते हैं तो उनकी चीजें थोड़ी सी सस्ती हो जाती हैं, आप उन्हें एक्सपोर्ट सब्सिडी भी देना शुरू कर देते हैं कि आप निर्यात कीजिए, इतना पैसा हम आपको अपनी तरफ से देंगे ताकि विदेशी बाजार में आपका सामान थोड़ा सा सस्ता हो सके। आप जो मुद्रा का जो एक्सचेंज रेट है उसमें भी उसको कंट्रोल करके, उसमें कमी बेसी करके आप उन्हें मदद दे सकते हैं अपने यहां के उद्योगों को। और सच पूछिए तो एक प्रकार से जो स्वदेशी आंदोलन है वो भी कहीं ना कहीं संरक्षणवाद की नीति के अंतर्गत ही आप ले सकते हैं। कोटा प्रणाली आप ला सकते हैं कि कितनी चीज, कितनी क्वांटिटी का उत्पादन किया जाएगा। लाइसेंस प्रणाली आप ला सकते हैं कि बिना लाइसेंस लिए आप चीजों का उत्पादन नहीं करेंगे, और आप लाइसेंस उतने ही देंगे कि बाजार में वस्तु की जो सप्लाई है वो ज्यादा ना हो पाए, तो इससे भी उद्योगों को आपस में ही कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये सब संरक्षणवाद के वो हथियार हैं, या कह लीजिए वो टूल्स हैं, जिसके माध्यम से सरकार अपने यहाँ के उद्योगों को संरक्षण देती है। और ये बात जरूर है कि संरक्षण देने से हमारे यहाँ के उद्योग फलने फूलने तो जरूर लगते हैं, लेकिन इनका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, क्योंकि अगर प्रतिस्पर्धा नहीं है तो फिर जो कंज्यूमर है, उत्पादक है, उसको चीजें महंगे रेट में मिलेंगी, वो क्वालिटी पर भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, रेट उसके कम हो उस पर भी वो ध्यान नहीं देंगे, नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें उस पर भी उनका ध्यान नहीं जाएगा। उनको लगेगा यार कि हम चीज पैदा कर रहे हैं और बिक रही है, हमको फायदा हो रहा है, तो हमको क्या लेना देना। तो ये उसका निगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक दुष्प्रभाव भी होता है। तो मित्रों, ये संरक्षणवाद जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, और जितना भी वक्त मेरे पास था मैंने अधिकतम उपयोग करते हुए अपनी बात आपके सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप किताबों के माध्यम से इसे सिस्टमेटिक तरीके से समझ लें। मित्रों, जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: सुमित कुमार सिंह सुपौल बिहार से, नवल किशोर उत्तराखंड से, रूपेश शर्मा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, आशीष यादव सागर मध्य प्रदेश से, इमरान खान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, लीलावती पटना बिहार से, नंद किशोर भटकर और सी के मौर्य वाराणसी उत्तर प्रदेश से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इससे पहले कि मैं डेली ऑडियो लेक्चर के समापन के लिए आप सबकी इजाजत चाहूं, मैं आप सबको इस बात के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि बीच के ये तीन दिन जो छुट्टियों के दिन होंगे आपके बहुत ही सुखद और उपयोगी तरीके से व्यतीत हों। दोस्तों, अंत में मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।